एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
यीशु तेरा प्यार है कितना महान, पापी को जो देता है जीवन अनंत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें ग्रहण कर, हमारे मनों को खोल दे। जैसे हम तेरे वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हमें तेरा पवित्र आत्मा से चला ताकि हम तेरे वचनों को सुन करके समझ सके और तेरे रास्ता में चलने सके। पिता मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो और विशेष आशीष दे मेरे संग हो। पिता तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सहभागिता के माध्यम से विकास का रहस्य। 1960 के दशक की शुरुआत में हॉलैंड का एक आदमी ब्रदर एंड्रियास रोमानियाई सीमा में अपने BW में कम्युनिस्ट गार्डों से छुपाकर बहुत सारी बाइबल ले गया। वह एक होटल में गया और प्रार्थना करना शुरू कर दी कि परमेश्वर उसका सही मसीही समूह के लिए नेतृत्व करेंगे, वे लोग जो पवित्र शास्त्र की अपनी प्रतियों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उस सप्ताहांत एंड्रियास होटल के क्लर्क के पास गया और उससे पूछा कि ए कलिसिया कहाँ हो सकता है। क्लर्क ने उसे थोड़ा अजीब तरह से देखा और जवाब दिया, हमारे पास बहुत से नहीं हैं, आपको पता है। इसके अलावा आप भाषा को समझ नहीं पाएंगे, क्या आप नहीं जानते थे। एंड्रियास ने जवाब दिया, मसीह एक तरह की सार्वभौमिक भाषा बोलते हैं। ओह, वह क्या है। इसे अगापे कहा जाता है। क्लर्क ने कभी इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन एंड्रियास ने उसे आश्वासन दिया, यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। एंड्रियास उस क्षेत्र में कई कलीसिया समूहों का पता लगाने में सक्षम था और अध्यक्ष और एक निश्चित संप्रदाय के सचिव के साथ बैठक आयोजित करने में कामयाब रहा। दुर्भाग्यवश हालांकि एंड्रियास और इन पुरुषों को कई यूरोपीय भाषाओं की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने पाया कि उनमें से कोई भी आम नहीं था, तो वहां वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। एंड्रियास ने अपने बहुमूल्य सामान के साथ कई मीलों तक की खतरनाक यात्रा की थी, लेकिन यह कहने का कोई तरीका नहीं था कि यह पुरुष वास्तविक मसीही भाई या सरकारी सूचनार्थ थे या नहीं। अंत में उन्होंने कार्यालय में एक मेज पर एक रोमानियाई बाइबल देखी। एंड्रियास ने अपनी जेब टटोली और एक डच बाइबल बाहर निकाली। उसने पहला कुरिन्थियों 16 का 20 पृष्ठ निकाला और पुस्तक के नाम का इशारा करते हुए बाइबल को दिखाया, जिसे वे पहचान सकते थे। तुरंत उनके चेहरे चमक उठे। उन्होंने जल्दी ही रोमानियाई बाइबल में वही समान अध्याय और कविता पाई और उसे पढ़ा। यहाँ सभी भाई आपको बधाई देते हैं, पवित्र चुंबन के साथ एक दूसरे का अभिवादन करें। वह दोनों पुरुष एंड्रियास के पीछे आए। तब उनमें से एक ने अपनी बाइबल को देखा और नीति वचन 25:25 पाया। अंद्रियास ने आयत पाई और पढ़ा, एक दूर दराज के देश से किसी थकी हुई आत्मा के लिए ठंडे पानी की खबर बहुत ही अच्छी होती है। इन पुरुषों ने पवित्र शास्त्र के शब्दों के माध्यम से आधे घंटे बातचीत और साझा किया। वे इस सहभागिता से इतने खुश थे कि सभी सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गए। वे तब तक हंसे जब तक उनकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। अंद्रियार जानता था कि उसने अपने भाइयों को पाया था। जब उसने उन्हें अपनी बाइबल दिखाई तो रोमन लोग अभिभूत हुए और उन्हें बार बार गले लगाने लगे। उस शाम को होटल में क्लर्क ने अंद्रियास से संपर्क किया और टिप्पणी की, कहो मैंने शब्दकोश में अगापे देखा। उस नाम की कोई भाषा नहीं है, वह प्रेम के लिए सिर्फ एक ग्रीक शब्द है। अंद्रियास ने उत्तर दिया, यह वही है, मैं इसके बारे में पूरी दोपहर बात कर रहा था। क्या आपने उस खूबसूरत भाषा की खोज की है? आज आप सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हम सभी को अपने प्रेम के महान चक्र में ला सकते हैं। कलीसिया का निर्माण सहभागिता के लिए किया गया। यीशु ने पोषण और समर्थन की बुनियादी मानव आवश्यकता को पूरा करने के लिए कलीसिया की स्थापना की। हम सभी की जरूरतें होती हैं और यही कलीसिया सब के बारे में है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम सहभागिता में आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। पवित्र शास्त्र एक मसीही धर्म प्रचारकों से संबंधित कलीसिया का खुलासा करता है, जिसने पुरुषों और महिलाओं को एक सुखद सहभागिता में जो सर्वशक्तिमान तक सभी तरह से फैलता है। हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 1:3-4 में, हमने जो कुछ देखा और सुना है हम आपको बताते हैं ताकि आप हमारे साथ संगति कर सकें, और हमारी सहभागिता पिता और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हम अपनी खुशी को पूर्ण करने के लिए इसे लिखते हैं। यीशु के साथ संपर्क करने और एक दूसरे के साथ जुड़े हृदय का एक समुदाय पूरी तरह से खुशी का अनुभव करता है। वे सभी एक ही भाषा, प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। मसीह एक विस्तृत परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। वे मसीह में भाई और बहन बन जाते हैं क्योंकि सभी के अंदर एक दयालु आत्मा है। व्यापक विश्वास की एकता मसीहों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। यीशु के प्रेरितों द्वारा स्थापित चर्चों के सदस्यों को उनकी समान मान्यताओं, परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम और उनकी सेवा करने की इच्छा और दुनिया में उनकी कृपा साझा करने की इच्छा थी। सहभागिता के इस करीबी बंधन से शक्तिहीन और सताए गए अल्पसंख्यकों ने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। कलीसिया जो यीशु मसीह ने स्थापित किया था, क्या मसीह के पास एक कलीसिया है या धार्मिक संगठन का पूरा विचार सिर्फ एक मानव आविष्कार है? यीशु ने जवाब दिया, यह हम पढ़ते हैं 16:18 में, इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा और नरक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु अपने कलीसिया की मुख्य चट्टान कोने के पत्थर हैं। किस समूह ने नींव का एक हिस्सा बनाया? हम पढ़ते हैं 2:20 में, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर यीशु मसीह के साथ मुख्य कोने के पत्थर के रूप में बनाया गया। जब सुसमाचार का प्रचार किया गया तो परमेश्वर ने क्या किया? हम पढ़ते हैं 2:47 में, और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। जब यीशु ने कलीसिया की स्थापना की तो उसने वादा किया कि नर्क के द्वार इस पर प्रबल नहीं होंगे। 16:18 और कलीसिया अभी भी मौजूद हैं। रोमन सम्राटों से लेकर कम्युनिस्ट तानाशाहों के लिए यह बेहद शक्तिशाली दुश्मन रहा है, लेकिन केवल शहीदों के खून ने इसे मजबूत होने का कारण बना दिया है। जब एक मसीही को खूंटी पर जला दिया गया था या शेरों के आगे फेंक दिया गया था तो कई अन्य लोग उसका स्थान लेने के लिए उठे। संशयवादियों ने कलीसिया को दूर करने का सबसे अच्छा प्रयास किया है, लेकिन मसीह सत्य एक वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष युग में पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा करता है। पौलुस एक जीवित शरीर का कलीसिया के रूप में प्रतिनिधित्व करता है और शरीर को यीशु मसीह के रूप में कुलुसियों 1:18, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु में हमारे विश्वास की गवाही देते हैं और कलीसिया के शरीर के सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि हम सभी को एक शरीर में एक आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:13 में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पुनर्जीवित मसीह का कलीसिया के बीच चलते हुए मसीह को चित्रित करते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:20, 12, 13, मसीह ने कभी भी अपने लोगों को त्यागा नहीं है और वह कभी उन्हें ऐसा नहीं करेंगे। वे अपने लोगों को कभी नहीं त्यागेंगे। एक उद्देश्य के साथ कलीसिया खड़ा किया गया है। एक मसीह के लिए कलीसिया में उपस्थिति महत्वपूर्ण है। हमें अपने विश्वास को जीवित रखने और इसमें वृद्धि करने के लिए दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है। कलीसिया 3 अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है, कलीसिया सत्य की रक्षा करता है। सत्य का स्तंभ और नींव 1 तिमोथियस 3:15 के रूप में कलीसिया दुनिया के सामने परमेश्वर की सच्चाई को कायम रखता है और उसका बचाव करता है। हमें पवित्र शास्त्र के आवश्यक सत्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए अन्य विश्वासियों के सामूहिक ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा है, पापियों के लिए परमेश्वर क्या अनुग्रह कर सकते हैं। कलीसिया इसका एक उदाहरण है। मसीह ने विश्वासियों के जीवन में जो परिवर्तन किए, परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की है, जो हमें अपने अद्भुत प्रकाश 1 पत्रस 2:9 में बुलाते हैं। तीसरा, परमेश्वर के लोग एक जरूरतमंद दुनिया के लिए उनके गवाह हैं। स्वर्ग लौटने से ठीक पहले यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आती है तब तुम्हें शक्ति मिल जाएगी और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और समारिया और संपूर्ण पृथ्वी पर मेरे साक्षी बनोगे। हम पढ़ते हैं इसे प्रेरितों के काम 1:8 में। कलीसिया को दुनिया भर में परमेश्वर के जबरदस्त प्रेम का संदेश ले जाने का यह एक बड़ा विशेष अधिकार है। कलीसिया ताकत के लिए व्यस्तित है। मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की वह एक निश्चित संगठन था। इसे अपनी सदस्यता में शामिल किया जा सकता है या बाहर रखा जा सकता है। मत्ती 18:15-18, परमेश्वर के कलीसिया ने नेताओं को नियुक्त किया और एक विश्व मुख्यालय के साथ साथ स्थानीय मीटिंग स्थानों, प्रेरितों के काम 8:14, 14:23, 15:2 और 1 तिमोथियस 3:1-13 देखें। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो सभी विश्वासी एक संगठित समूह में शामिल हो गए। प्रेरितों के काम 2:41-47, कलीसिया पारस्परिक प्रोत्साहन के लिए मौजूद है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10:24-25 में, और आइए हम विचार करें कि कैसे हम एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। आइए हम एक साथ सभा करना ना छोड़े, जैसा कि कुछ लोगों की रीति है, लेकिन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते आप देखेंगे, मसीह के दिन को निकट आते देखेंगे, तो और भी अधिक किया करो। इब्रानी 10:24-25। संक्षेप में, यह एक स्वस्थ कलीसिया समूह क्या करने की इच्छा रखता है। इसके सदस्य एक दूसरे के साथ विश्वास से बंधते हैं। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर ने अपने कलीसिया का गठन अपने लोगों को मजबूत करने और दुनिया की सेवा करने के लिए भी किया। व्यक्तिगत तरीके से अलग अलग करने के मुकाबले हम कहीं ज्यादा एक साथ कर सकते हैं। प्रार्थना करने से होने वाली खुशी हम कलीसिया में पाते हैं। हमारे हृदय की गहराई में परमेश्वर से प्रार्थना करने की लालसा है, और जब तक इसे अभिव्यक्ति नहीं दी जाती या धीरे धीरे मंद होती जाती है। जब भजनकार ने प्रार्थना की जगह पर जाने के बारे में सोचा तो उन्हें कैसा लगा, आइए हम इसे पढ़ते हैं। भजन संहिता 122 का 1 में यहाँ लिखा है, मैं उन लोगों के साथ आनंदित हुआ जिन्होंने मुझसे कहा, आइए हम प्रभु के भवन में चलें। और हम पढ़ते हैं भजन संहिता 95 का 6 में, आओ हम प्रार्थना में झुककर दंडवत करें, आइए हम अपने निर्माता प्रभु के सामने घुटने टेकें। बाइबल का अध्ययन और प्रचार ही नए नियम की उपासना का केंद्र है। प्रेरितों के काम 2 में पाया गया है, पेंटिकोस्ट के दिन पत्रस के धर्म उपदेश के साथ शुरू होकर और प्रोटेस्टेंट सुधारकों के समय से हमारे समय तक हर महान धार्मिक पुनरुत्थान बाइबल के प्रचार के आधार पर किया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, किसी भी दोधारी तलवार की तुलना में भी तेज है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4 का 12 और 13 में, कलीसिया के साथ सही क्या है? कुछ आपत्ति करते हैं कि कलीसिया अपूर्ण लोगों से भरा है। हेनरी वार्ड बीचर ने क्या कहा है जो कि सच है, कलीसिया विशिष्ट मसीहों की प्रदर्शनी के लिए कोई गलियारा नहीं है, बल्कि अपूर्ण लोगों की शिक्षा के लिए एक स्कूल है। इसलिए हमें अपूर्ण कलीसिया में प्राथमिकता से अपने उद्धारकर्ता पर अपनी नज़र रखनी चाहिए जो हमारे लिए सेवकाई करते हैं। इसमें दोष रहने के बावजूद भी कलीसिया मसीह की है, इसलिए यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करिए। हम पढ़ते हैं इफिसियों 5 का 25 से 27 में, यीशु मसीह ने कलीसिया को प्यार किया और उसे पवित्र बनाने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, उसे वचन रूपी पानी से धोकर शुद्ध बना दिया और उसे एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में पवित्र और निर्दोष, किसी दाग या झुर्रियों या किसी अन्य दोष से रहित बनाकर पेश किया। यीशु के लिए कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने खुद को उसके लिए न्यौछावर कर दिया, और उन्होंने हम में से प्रत्येक के लिए और कलीसिया के लिए सामूहिक रूप से बलिदान दिया। इसलिए कलीसिया का सदस्य होना आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आप यीशु मसीह के शरीर के सदस्य हैं। कलीसिया का चयन कैसे करें? दुनिया में कितने लोग हैं जो यीशु में सच्चा विश्वास करते हैं? हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 का 4 और 5 में, एक शरीर और एक आत्मा है, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। क्योंकि यीशु मसीह के पास सिर्फ एक विश्वास है, हम कैसे जान सकते हैं कि यह कौन सा है? यीशु हमें इसका समाधान देते हैं। आइए हम पढ़ें यूहन्ना 7 का 17 में, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना चुनता है तो वह सुनिश्चित कर लेगा कि मेरी शिक्षा परमेश्वर के द्वारा कही हुई है या मैं खुद से बताता हूँ। यीशु मसीह ने कहा इसे जो रिकॉर्ड किया गया है यूहन्ना 7 का 17 में, और इसे आप मिलाइए यूहन्ना 8 का 31 और 32 से भी। असली सहभागिता पवित्र शास्त्र के प्रति ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक करिश्माई प्रतिनिधि या किसी विशाल संस्था के प्रति। बाइबल के माध्यम से परमेश्वर ने जिस प्रकाश का खुलासा आपके लिए किया है उसी में चले, और वे दिल खोलकर अपनी चाह आप पर लुटाएंगे। एक विकासशील मसीही एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के द्वारा खुलासा किए गए वचन के सत्य को पूरे दिल और दिमाग से स्वीकार करता है। तो आइए हम यीशु मसीह को पकड़े, सच्चा कलीसिया को जाने जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु से प्रेम करते हैं, उसके पीछे चले और उसका सदस्य बने। उस कलीसिया जो शरीर के तौर पर दर्शाया गया है उसका हम अंग बने। परमेश्वर हमें मदद करे, उसके आत्मा की अगुवाई से हम सही कलीसिया का चुनाव करें और उसका सदस्य बने। यीशु मसीह हमें आशीष देवे और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को ग्रहण कर। तूने हमें सच्चाई प्रकट किया है पिता, हम तेरे सच्चाई के बातों को सुने, उसे चुने और सच्चे कलीसिया का सदस्य बने जो यीशु से प्रेम करते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं और तेरे रास्ता में चलते हैं। हम सबों को आशीष दे, पवित्र आत्मा आशीष दे पिता, सबों को आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।